हम सभी इस सत्र के आरंभ में तीन बार ओम की ध्वनि करते हुए ओम शांति कहेंगे, ठीक है। गहरी सांस लेके ओम की ध्वनि करते हुए एंड करेंगे शांति से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस तरह का अभ्यास आपको ये पक्का करने में मदद करेगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मुझ में है। पक्का करना है ना कि पीस इज नॉट एवरीवेयर एल्स बट विद इन मी। जैसे हमारे अंदर होता है तो वाइब्रेट होके पूरे वातावरण में फैलता ही है। सोर्स, उसकी शुरुआत हमारे ही मन और बुद्धि से होती है। ये हमने ब्रह्मा कुमारीज में आकर के जब पहली बार सुना, हम केवल 11 साल के थे, लेकिन यही चीज हमारी बुद्धि में बैठ गई। बाकी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन उसे टाइम लगा। पर ये कि मैं आत्मा हूं और मैं परमपिता परमात्मा शिव की अजर अमर अविनाशी संतान हूं, जबकि हम जैन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे 24 भगवान है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत थे। जैसे जैसे आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती जाती है, सत्यता के और करीब आती जाती है, और इसी के आधार पर आज हम शुरू करेंगे राजयोग की आधार और विधि क्या है। कल ही हमने शिवानी बेन से ये बात तो सुन ली कि मेडिटेशन एक वायरलेस कनेक्शन और कम्युनिकेशन का मेथड है, विधि है, सही। वायरलेस कनेक्शन कम्युनिकेशन, दूसरी बात, और कम्युनिकेशन भी कैसा, क्या बताया था, टू वे, वन वे नहीं, टू वे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत प्रकार के योग, जब से हमारे महान संत साधु ऋषि मुनि हमारे भारत को थमाने के लिए बने, तब से लेकर के योग का अभ्यास की कोई ना कोई विधि वो सिखाते गए और विधियां बढ़ती गई, फैलती गई। जैसे हमने सुना होगा हठ योग, हमने सुना होगा भक्ति योग, हमने सुना होगा संन्यास योग, बुद्धि योग, समत्व योग, ऐसे बहुत सारे प्रकार के योग का गायन है। हम यहां क्या सीखने आए हैं, राजयोग। कुछ अलग है, कोई अनोखी बात है इसमें, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। हर प्रकार के योग में जो पहले बताए, उसमें या तो ब्रह्म तत्व से कनेक्शन है, या तो कोई न कोई श्लोक या मंत्र पर या शब्द पर ध्यान है, या कोई न कोई मूर्ति के साथ हम पूजा की विधि, आराधना की विधि के साथ जुड़ते हैं, या हम अपने शरीर को डिसिप्लिन में लाने की पूरा प्रयत्न करते हैं। और आप सब ने कोई ना कोई विधि तो अपनाई होगी। जो मेडिटेशन या योग अभ्यास के लिए सबसे पहली बार आए हैं, अपना हाथ उठाए। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं। यहां की विधि में अंतर क्या है? यहां आप आधार ले सकते हैं कोई YouTube का, जिसमें कमेंट्री है, जिसमें क्लास है, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें गीत है। आप ये पिक्चर का भी आधार ले सकते हैं, लेकिन उसमें से डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिलना है, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं। वो केवल आपको मदद करता है। यहां आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है योगी के रूप में। आपको बैठना है, आपको कुर्सी पे बैठना है, आपको खड़ा रहना है, आपको लेट के करना है, डजंट मैटर। पर आपको स्वतंत्र होना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिपेंडेंसी, कोई का भी आपका बहुत मना, आप इसके ऊपर टोटली निर्धारित है, तो फिर क्या होगा? आपको वही चीज खींचती रहेगी। इसलिए अगर आपको अच्छा मेडिटेशन करना है, तो आपको ये पक्का करना पड़ेगा, आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूं, और स्वतंत्रता ही मेरी शक्ति है। दूसरी बात, यहां पर लाइव कनेक्शन है, लाइव, समझ रहे हो? कभी इलेक्ट्रिसिटी को टच किया है? कितना पावरफुल होता है। हम तो केवल उसके वायर को टच करते हैं, प्लग को टच करते हैं, थोड़ी हमको वो कनेक्शन की फीलिंग आती है अपने अंदर, वो स्ट्रांग पावरफुल फीलिंग जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। पर यहां लाइव कनेक्शन दो पावर्स के बीच में, एक हम खुद, सोल पावर, नाम है ये, जस्ट लेबल है, लेबल आप कुछ भी दे दो, पॉइंट, एनर्जी, पावर, लाइट, ऊर्जा, रूह, नूर, आप कुछ भी बोल, लेबल है। हमें लेबल तक नहीं रहना है, हमें उसकी अनुभूति में जाना है। मैं हूं, जब तक मैं अपने को इतना इजीली एड्रेस ना कर पाऊं, हमें प्रैक्टिस करना होगा। दूसरी बात, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो दिखता नहीं है, ये पहली बार होगा। जो जो दिखता नहीं है उसके ऊपर हमें ध्यान धरना है। आप फिर भी बोलेंगे, हम क्या देखेंगे मेडिटेशन में, हमको क्या देखना है, किसको देखना है? बार बार ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग इतने हैबिचुएटेड है। पर हमारे पास जो दो फैकल्टीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मैजिकल है, वो कौन सी है? अपना मन, अपनी बुद्धि। कभी ध्यान दिया है? वो दोनों दिखते नहीं है, लेकिन 24 आवर्स अपने अंदर से वो काम करते हैं, कंटिन्यूसली, अविरल। हमको लगता है हम सो गए, लेकिन मन बुद्धि अपना काम करती है। सोचो, साइंटिस्ट कहते हैं हम 2% ही जितना यूज करते हैं लाइफ में, जबकि वो इतनी अथाह एनर्जी से भरपूर है। कारण तो होगा कि क्यों हम केवल 2% जितना यूज कर रहे हैं, उसका भी तो कारण होगा ना, वो हमें धीरे धीरे रियलाइज होगा। दूसरी बात, किससे कनेक्ट होना है, क्योंकि मेडिटेशन माना ही जोड़, मिलन, कनेक्शन, लिंक। जैसे किसी भी, हमें जितने भी डिवाइसेस मिले हैं, साइंस ने जो हमें प्राप्त कराए, कोई भी कनेक्शन के बगैर नहीं है, अपने आप चलने वाले कोई नहीं है, सबका कनेक्शन है। जैसे हम आगे देखें, आपको ये चित्र क्लियर दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो सबसे ऊपर दिखाया है कि साइंस ने बनाया सैटेलाइट। हमें दिखता है सैटेलाइट इन आंखों से? दिखता है? कहां पर होता है सैटेलाइट? स्पेस पे होता है। हमको कहां यहां दिखता है, पर है, और हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि है। अच्छा, और हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? नीचे कोई भी डिवाइस ऑन करते हैं, जैसे टेलीविजन है या जो भी दूसरे डिवाइसेस है, और वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, और हम जिस चैनल को देखना चाहे हम देख सकते हैं। इस सारे में आपको याद रखना है वो लिंबू जो शिवानी बहन ने याद कराया कल, कनेक्शन, अटेंशन, ध्यान, कि मैं इटर्नली अनादि काल से मेरा किसके साथ कनेक्शन है, वो मेरा सैटेलाइट कहां है। एक बहुत इजी बात है कि वो सर्वत्र है, बहुत इजी है, ये सर्वत्र है, मैं जहां भी हूं है। पर एक होता है कि जो सर्वत्र जहां भी जो है उन्हें हम रिस्पेक्ट तो करें, खाली कहने से क्या होता है। जितने भी स्पीसीज है, जितने भी 5 तत्व है, क्या हम सब उनको रिस्पेक्ट देते हैं जब हम कहते हैं कि वो पावर तो सर्वत्र है? सोचो, सचमुच ऐसा सब होता दुनिया का अभी जो सेटअप है, अगर हम सर्वत्र समझ के उनको रिस्पेक्ट देते? प्रैक्टिकल में नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकल में है क्या, वो तो समझना पड़ेगा ना। तो एक है, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। कल आपको राधिका बहन ने परमात्मा का परिचय दिया, बताया ना, परमात्मा का जो स्रोत स्थान है वो भले कहीं भी पहुंचे, सर्वशक्तिवान है, लेकिन उनका जो स्रोत स्थान है उसका परिचय आपको पहले था कि वो परम धाम निवासी है? था पहले परिचय? हम तो अपने रीति से, जिन्होंने हमको जो बताया उसी मान्यता से चलते रहे, और थोड़े थोड़े समय के लिए प्राप्ति भी करते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है हमने जो अभी तक किया उसमें, नुकसान कुछ भी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अगर आपने पुरुषार्थ किया है कोई भी तरह का, तो आपको प्रारब्ध मिलनी है, आपको फल जरूर मिलना है। लेकिन जो रियल कनेक्शन था, केवल हम उसे भूल गए। एंड बहुत इजी कारण है इसका, हम इसीलिए भूल गए क्योंकि वही मन और बुद्धि पृथ्वी पर हर चीज, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, स्थान, कर्तव्य, कारोबार, कार्य सब में व्यस्त हो गई। चेक करिए आप सारा दिन, जब से उठते हो और रात को सोने तक, आपकी मन बुद्धि कहां कहां होती है, और वो नेचुरल हो गई है ना। हर एक चीज के साथ हम कितना इजीली कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्शन अविनाशी था परमात्मा के साथ, वो जैसे टूट गया। और उसमें फिर क्या हो गया कि दुनियावी जितने भी साथ कनेक्शन था, कोई कोई के साथ तो डीप अटैचमेंट हो गया। अब बताओ, जिसके लिए हम कहते हैं इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये चीज के बिना तो मैं रह नहीं सकता। चेन स्मोकर्स क्या बोलते हैं, ओ इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। कितना है वो, 2-3 इंच, 1 इंच, 2 इंच, जितना भी है वो, और हम इतने 5.5-6 फुट के, लेकिन उस छोटी सी चीज के भी हम इतने आदि हो जाते कि उसके बिना हम नहीं रह सकते। सोचो, हम आत्मा और एक चीज के बिना नहीं रह सकते, बताओ इज इट कंप्लीटली राइट? यूनिवर्स इज रेडी टू गिव अस एवरीथिंग, एवरीथिंग। कहते ना, राइट सोच होगी आपको यूनिवर्स जरूर वापस देगा। यूनिवर्स भी पूरा हमारे लिए बना हुआ है, पर आज हमने जिस रीति से अपने जीवन की गाड़ी चलाई, आज यूनिवर्स हमसे थोड़ा नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल कनेक्शन है, जिसके आधार से हम सारे यूनिवर्स से सुख ले सकते थे, प्राप्तियां कर सकते थे, वी कुड हैव लिव्ड इन हार्मनी, वो कनेक्शन भूल गए। जो हम पक्षी की तरह ऊंचा उड़ते थे, पंख जैसे टूट गए। हमने जितनी भी चीजें बनाई, जैसे एरोप्लेन बनाया ऊपर उड़ने के लिए भी, उसमें भी कहीं ना कहीं कभी डिफेक्ट आ जाती है। लेकिन ये जो कनेक्शन है, उसको हम जब भूल जाते हैं ना, पूरे ही हम डिफेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए हमको छोटी छोटी बातों में दुख आता है, तकलीफें आती है, डिफिकल्टीज महसूस होती है। ठीक है, अगर आपका मनोबल स्ट्रांग है तो वेरी गुड, आप काफी हद तक अपने कंट्रोल में रह सकते हो, पर कब तक? ये बात है ना, कहीं ना कहीं हम चार्जिंग करना भूल गए। जो बीच बीच में चार्जिंग करना होता है आत्मा रूपी बैटरी का, वो भूल गए। अगर हम कार्य करते करते चार्जिंग कर लेते तो हमारी आज की जैसी दशा नहीं होती। इसीलिए हमें फिर से ये जो इटर्नल कनेक्शन है उसको महसूस करना बहुत बहुत अनिवार्य है। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड इट इज योर राइट। ये नहीं कि नहीं नहीं इसलिए आपको ब्रह्मा कुमारीज में आना ही है, इसीलिए आपको ब्रह्मा कुमारीज में आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, दैट इज योर विश। बट कौन सी चीज अनिवार्य है, एसेंशियल है अभी हर एक आत्मा के लिए, राइट है हर एक आत्मा की, कि वो अपने आप को चार्ज कर सके, अपना इटर्नल कनेक्शन बना के रख सके। दुनिया की भीड़ में, दौड़ में हो सकता है कि वो चीज हम भूल गए हैं, तो कौन याद दिलाएगा? कौन ये याद दिलाएगा? एनीबडी? इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो वन हु कैन मेक अस रिमाइंड अबाउट दैट, कि कैसे आप फिर से कनेक्शन करो। वो तो जिससे हम भूल गए हैं वो ही आकर के ये बात बताते हैं कि मुझे याद ऐसे करो, पूरी विधि बताते हैं। उसमें गीता में भी वर्णित है, क्योंकि कई चीजें ऐसी लिखी हुई है ना जो डायरेक्ट कैच की हुई है, डायरेक्ट, और फिर उन्होंने शब्दों में वर्णित किया है, और उसमें एक शब्द में कहा है मन मना भव, और उसका वर्णन किया है कि आप अपने को आत्मा समझ मुझ अपने परमपिता परमात्मा को याद करो, या अपने मन को मुझे समर्पित करो। कौन से मन को? विच इज वॉन्डरिंग, जो भटक रहा है। अच्छा, भगवान को क्या चाहिए अपने मन से? कुछ चाहिए? Does he need anything from us? He is full. He doesn't need anything. फिर भी वो कहता है कि मुझे याद करो, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ हमारा ही बेनिफिट होगा। And we have the birth right with God. हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो केवल कह रहा है, बच्चे अपनी राइट लेने के लिए तो आओ मेरे पास, अपना अधिकार तो लेने आओ। आपको मेमोरीज होगी अपने पिताजी की, अपने मदर की, कि जब आप बहुत छोटे थे तो आपके फादर मदर कोई भी एक इंडिविजुअल से आपको बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत मिला, और आधार केवल निश्चल प्यार था। आप उसे कभी भूल सकते हो? उनके मरने के बाद भी भूल सकते हो? कभी नहीं। हां, अगर उसमें से कोई व्यक्ति बहुत आपके लिए स्ट्रिक्ट रहा हो, आपके ऊपर गुस्सा मारा हो, बहुत ऐसे होते हैं आजकल, उसको तो याद भी नहीं करना चाहता है वो बच्चा। माना, कैन देयर बी एनी नेगेटिव एलिमेंट इन माई कनेक्शन विद गॉड? सो शुड आई बी गॉड फियरिंग? नॉट एट ऑल। किसका फियर होना चाहिए अपने को? किसका फियर होना चाहिए? मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, इसका थोड़ा फियर होना चाहिए। अगर उसमें हम बिंदास हो जाते हैं तो फिर कुछ भी निकल आएगा। बेफिक्र अगर हो जाते, केयरलेस हो जाते, तो कुछ भी निकल आएगा, और फिर उसके इंप्रेशंस हमारे साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसीलिए इसमें मेथड है कनेक्शन, और दूसरी बात बताई है जहां मोबाइल का यूज बताया है, कि आप किधर भी विश्व के किसी कोने में आप कनेक्ट करो, अब जब तक सामने वाला उठाएगा नहीं, कम्युनिकेशन होगा। That means I alone connect with God is not enough. जब तक वो receiver नहीं उठाता है, there cannot be any communication. अच्छा, वो receiver उठावे उसके लिए क्या चाहिए? वो receiver उठावे उसके लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही जब तक परमात्मा के साथ थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब कैसे बढ़ाएंगे बताओ? फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़े? कोई डिवाइस थोड़ी है, कोई ऐसे बटन होगा और हम अपनी फ्रीक्वेंसी उसमें लगा देंगे। समथिंग वी हैव टू डू फॉर इट ना। तो उसका तीसरा मेथड आपको कल बताया, रिलेशनशिप। जब तक किसी के साथ संबंध नहीं है, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होता। इमेजिन आप वॉक पे गए और कई लोग भी वॉक पे हैं। आजकल ऐसी ट्रेंड है, कोई को समझाया गया है, भाई आप वॉक पे जाते हो तो सबको राम राम बोलो, तो वो बोल देते हैं, सिखाया है बोल देते हैं। लेकिन ऐसे कोई स्ट्रेंजर के साथ आप खड़े होकर बात करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। कोई आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे आप मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, इतना तो बोलेंगे ना, पर इतना ही। सारा दिन उनको कोई याद नहीं करने वाले हैं आप। अच्छा, उसके बाद फिर से वो मिले, दो बार मिले, तीन बार मिले, तो अचानक उसने कहा, व्हाई डोंट वी हैव टी टुगेदर? और आपने बोला, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। फिर क्या होगा चाय पे? बातचीत होंगी। अब बातचीत से क्या होगा, कनेक्शन तो हुआ लेकिन साथ में एक एसोसिएशन हुआ और एसोसिएशन के आधार से एक संबंध बना, फ्रेंडशिप का या जो भी कहो। वो रिलेशनशिप से आप क्या उस व्यक्ति को कभी भी याद कर सकते हो? नहीं। लेकिन आपको जब जरूरत होगी आप उनका नंबर डायल करेंगे, ऐसा होता है ना। लगभग मेजॉरिटी केसेस में जब हमारी जरूरत होती है तब हम उनको डायल करते हैं, याद करते हैं। तो क्या भगवान की याद ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमें जरूरत है तभी हम उनको याद करें? हमारे बड़ों ने भी इसी प्रकार से कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे ऐसा कैसा हमारा संबंध है जो हम केवल दुख के टाइम उनको याद करें? अच्छा एक बात तो सही है उसमें कि पॉसिबली वी थिंक कि ही इज द ओनली वन हु कैन हेल्प इन आर सॉरो। हो सकता है ये बिलीफ सिस्टम के आधार पर हम दुख में उसे याद करते हैं, सुख में तो सब है ना, सुख में उनको याद करने की क्या जरूरत। अरे भगवान ने ही ये सब दिया है मुझे सुख के लिए, सो आई हैव ऑल राइट ऑन दिस। लेकिन जब वही चीज दुख में परिवर्तन हो जाती है तब क्या कहते हैं, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर क्या ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है जिसमें हम रो रहे हैं एंड यू फील के नो गॉड शुड नॉट लाफ एट मी, गॉड शुड नॉट ओवर रूल माई कंप्लेन, ही शुड बिकम हिज दयालु कृपालु एंड ही शुड डू वॉट ही इज, लाइक वी एक्सपेक्ट के ही शुड डू वॉट ही इज, देन वॉट विल ही एक्सपेक्ट इफ ही इज आर पेरेंट? ये बातें हैं ना, कभी हमने ऐसा सोचा है कि आई ऑल्सो शुड बी डूइंग वॉट आई शुड बी डूइंग, है ना। तो इस रीति से अगर वो रिलेशनशिप पक्का होता जाता है ना, कई बार हम पूछते हैं लोगों को, अच्छा आप लिस्ट लिखो ना, आप सबसे क्लोज किनके साथ है, तो वो लिस्ट लिखते हैं, या माय वाइफ इज इन द फर्स्ट नंबर और माय मदर इज द फर्स्ट नंबर, देन माय डॉटर, देन दिस एंड दैट। फिर पूछो कि जिससे आपको फर्स्ट नंबर आपने किया उससे आपको सब कुछ मिलता है, तो वो कहेगा अरे फर्स्ट नंबर से सब मिलता तो मैं सेकंड थर्ड फोर्थ लिखता ही क्यों। माना हमको हर संबंध से कुछ ना कुछ मिलता है। इस बिलीफ पे हम अपने संबंधों को बढ़ाते रहते हैं, फैमिली को एक्सटेंड करते रहते हैं कि भाई और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, और हम चाहते हैं कि माना पेट भी रखेंगे, ऐसे भी एक्सटेंशंस होते हैं पैसों के लिए। इस प्रकार से माना कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसके पास आपको सब कुछ मिले, पर ऐसा नहीं है कि आपको अनुभव नहीं है, अनुभव हम सबको है। फॉर एग्जाम्पल नीचे का जो बताया है एकदम बॉटम में, एक बच्चा है छोटा उसकी मां के साथ है ना, दिस कुड बी द मदर और द फादर। किसके पास वो बच्चा सदा रहता है, मतलब वो मदर या फादर के पास मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उस समय उस बच्चे के मन में है मुझे मेरा सब कुछ इन्हीं से मिलता है। जैसे डॉग भी होता है घर में, जो बहन या भाई उसकी पूरी संभाल करता है, स्नान कराता है, भोजन खिलाता है, उसको बाहर घुमाने ले जाता है, वो तो उसका एकदम प्यारा हो जाता है, उसकी मार भी खा लेगा। ऐसे ही बच्चे हम थे ना, तभी हमारी पूरी वर्ल्ड ना वो हमारा एक पेरेंट या दोनों, किसी और के पास ज्यादा रुकने वाले हम नहीं है। अंदर में आत्मा को क्या फीलिंग है, मुझे सब कुछ यहां से ही मिल रहा है। लेकिन वो थोड़े समय तक रहता है, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं ना, स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा कनेक्शन ऐसा वाला कनेक्शन हमारे फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। फिर वही माँ या बाप फोन करके बुलाना चाहते हैं तो हम कहेंगे नहीं अभी मैं फ्रेंड्स के साथ हूं, मैं आता हूं थोड़ी देर में। उस समय उस आत्मा को क्या फील होता है, मुझे सब कुछ अपने फ्रेंड्स से मिल रहा है, तो उसका कनेक्शन, उसका कम्युनिकेशन, उसका रिलेशनशिप सारा फ्रेंड के साथ हो जाता है। वही बच्चा बड़ा होता है, एग्जाम टाइम आती है, तब उसका कनेक्शन टोटली वो टीचर और स्टडी। फ्रेंड बुलाना चाहता है, आओ ना खेल लेते हैं, नहीं मेरी एग्जाम है, आई कांट कम टुडे। प्रायोरिटी चेंज, जहां पर उसको लगता है अभी मेरा ये वर्ल्ड है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, दूसरी कोई चीज नहीं कर सकता हूं। फिर वही बड़े होके उनको जॉब मिलता है, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, पूरा वर्ल्ड उसका वो ऑफिस, ऑफिस की बातें, ऑफिस के फोन, ऑफिस की फाइल्स, एवरीथिंग, एवरी इमोशन इज मेजरली कनेक्टेड विथ द वर्क प्लेस। ऐसा होता है ना, शादी होंगी तो ऐसे किसी भी बुक में लिखा है कि अभी आज से ना योर वर्ल्ड इज योर वाइफ और योर वर्ल्ड इज योर हस्बैंड, किधर भी लिखा हुआ है, कहना पड़ता, ट्रेनिंग है उसकी कोई, जरा भी नहीं। ओ, उस पीरियड में तो लाइक शी और ही इज माई एवरीथिंग, पहचानते तो है नहीं, पूरा तो जानते नहीं है, फिर भी आत्मा को ऐसा फील होता है कि नाउ दिस इज द वन फ्रॉम होम आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग। उसके बाद बच्चे होते हैं तो प्रायोरिटी बदल जाती है, पहले बच्चे, कैसे ट्रांसफर होता ही रहता है हमारा कनेक्शन, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशन। और फिर जब एक टाइम आता है कि भाई बीमारी आई तो इमीडिएट डॉक्टर को याद करते हैं ना, पहले घर की दवाई तो करेंगे, अगर वो नहीं चली तो डॉक्टर विल बिकम माय एवरीथिंग। अगर उसके बीच में मेरे अंकल आकर के मुझे कुछ एडवाइस देने लगते, प्लीज वो डॉक्टर आते हैं, वो मेरे को सारा बताते हैं, वी आर सो मच कनेक्टेड विद द डॉक्टर। और फिर वो कहते नहीं आपको तो सर्जरी की जरूरत है, तो सीधा डॉक्टर से अपनी बुद्धि योग किधर चली जाती है, सर्जन के पास, फिर वही इंपॉर्टेंट लगता है, बट द केस इज क्रिटिकल। तो डॉक्टर सर्जन बताते हैं कि भाई इट्स अ क्रिटिकल केस, तो प्लीज आप बचा लेंगे ना उनको, दुआ करो, प्रे टू गॉड, ही इज द वन। और उस समय मानो न मानो, जो भी चित्र सामने होगा हॉस्पिटल में, बैठ जाएंगे। और उस समय कनेक्शन भी फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो पेशेंट ठीक हो गया तो बस पूछो नहीं, जिनको आपने प्रे किया उसको बराबर आप एक रूटीन में ला लेंगे। पूछो अपने आप से, उस समय क्या सचमुच अपना मन बुद्धि कनेक्ट हो पाती है कि हम केवल अपने मांगने में मस्त हो जाते हैं। और अगर एज हो जाए, बॉडी जो है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है जो सब जगह से डिटैच होके कनेक्ट हो, तो हो पाता है, कहते ना इट इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि लाइफ की जितने भी एक्सपीरियंस है वो हमारे अंदर है और वो कई बार हर्डल्स क्रिएट करते हैं मेडिटेशन में। इसलिए कई लोग कहते नहीं इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम लोग योग करने बैठते हैं लेकिन बहुत वॉन्डरिंग होता है। तो एक्चुअली सेंसिबिलिटी किसमें है, अगर आई नो के दैट मोमेंट वेयर लाइफ एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली गॉड्स डोर इज पॉसिबल, तो हम क्यों ना इसको प्रायोरिटी अभी से दे, जब से हम अभी है। अगर वो डोर तब खुलता है तो अभी भी खुलेगा, बट द ओनली कंडीशन इज सेल्फिशनेस से नहीं, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, आई वॉन्ट स्ट्रेंथ, आई वॉन्ट, केवल उसके लिए नहीं, बट वी हैव टू अगेन रिकलेक्ट आई एम ओरिजिनली इटर्नली कनेक्टेड विथ हिम एज अ सोल, इस फाउंडेशन पर। और मुझे उस इटर्निटी को फिर से महसूस करना है, ताकि मेरे स्टेट ऑफ माइंड और बुद्धि की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा वर्दी हो जाए. What I have lost from within myself, I need to gain back. तो इसीलिए he becomes the source for that. दो प्रकार के practices है राजयोग में. एक जिसको हम कहते हैं कर्मयोग. कर्मयोग माना कार्य करते हुए आप इस कनेक्शन में सदा बने रहे कि मैं किधर जुड़ा हुआ हूं. करना मुझे इधर है लेकिन मैं आत्मा किधर जुड़ी हुई हूं. अब तो पता चल गया, जैसे सूरज अपनी किरणों के लिए हमसे थोड़ी वेट करता है कि ये मांगेगा तो मैं दूंगा. बिल्कुल नहीं, उसका कार्य है, वो अपनी किरणें बिखेरता रहता है. उसी रीति से परमात्मा का कार्य है, वो अपनी प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, इन सब की रेखाएं या किरणें फैलाते रहते हैं, वो एनर्जी देता रहता है. पर मुझे क्लोज डोर्स में नहीं रहना है, जहां मुझे सनरेज मेरे पास पहुंचे ही नहीं. तो मुझे ये जो कनेक्शन है, इसका जो दरवाजा है, वो क्या करना है, सदा खुला रखना है. इसके बहुत फायदे हैं, वो तो आपको बाद में भी पता चलेगा. पर अभी हम देखते हैं कि इसे हमें रात सुबह से लेकर रात तक अपनी हर एक्टिविटी, यानी इवन आप वॉशरूम में जाओ, आप कहीं भी जाओ, वो कनेक्शन आपका बना रहे. अब ये कट नहीं होना है, इसको कहा जाता है राजयोग. ऐसा नहीं है कि कट होगा तो पाप लगेगा. He doesn't mean that. God doesn't mean that. पर अपनी बेनिफिट के लिए कहता है कि जो आत्मा ने लूज किया है, अगर उसे फिर से भरपूर करना है, जो शिवानी बेन कह रहे थे फुल फुल फुल, तो फिर ये मेथड है. और आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे अपने आप को भरपूर करना है और रखना है, आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ एनर्जाइज्ड, तो फिर ये कनेक्शन रखना है. मना कर्म भी करो लेकिन साथ में ये कनेक्शन भी हो, पानी पीते समय भी. और पानी पीने का टाइम तो मिल ही जाता है ना, तो फिर ये टाइम ये क्यों नहीं हो सकता. ये जरूर हो सकता है. केवल याद रखो हम भूल गए हैं. समझो आपके स्कूल का फ्रेंड है बचपन का, और सालों बाद आपके सामने आए, क्या आप पहचान पाएंगे? नहीं ना. बातों से फिर आप पहचानेंगे, अरे हाँ तुम तो ये हो, और फिर तुम इतनी खुशी इतनी खुशी. ऐसे ही परमात्मा को हम, जिनको हम प्यार से शिव बाबा, बाबा माना फादर, बाबा कहते हैं, तो उनके साथ हमारा कनेक्शन भूल गए थे, अब फिर से वापस जोड़ना है. तो एक है कर्म करते करते. याद कौन करेगा? आत्मा माना कौन? मन और बुद्धि. मेन काम कौन करेगा कनेक्शन का? मन और बुद्धि. मन बुद्धि क्या कनेक्शन है पता है? मन है ऑडियो और बुद्धि है विजुअल. तो जब आप मन और बुद्धि दोनों के साथ करेंगे तो आपको मन में विचार भी आएगा और विजुअल भी आप देखेंगे कैसे बाबा की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है. दूसरा है बुद्धि योग. बुद्धि योग माना मिनिमम एक बार सारे दिन में मैं बैठूं अपने साथ, कोई कार्य नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कहीं भी कोई दूसरी बात नहीं, मोबाइल भी बंद, और मैं अपने साथ बैठूं. उसे कहा जाएगा बुद्धि योग. माना बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो. जरूरी है, जरूरी है जस्ट टू बी विथ योर सेल्फ विदाउट एनी एक्टिविटी? बहुत जरूरी है. यू आर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ. अपॉइंटमेंट की डायरी होती है ना, इतने बजे इनको मिलना है, इतने बजे इनको मिलना है, इतने बजे इनके साथ लंच है. एक और चीज ऐड कर दो, अपॉइंटमेंट विथ माई सेल्फ. मुझे अपने लिए अपॉइंटमेंट लेनी है. तो उसे कहा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस में आप बैठते हो, और हो सके तो बिगिनिंग में उस एक जगह का ही प्रयोग करें बिगिनिंग में. क्योंकि जब भी मेडिटेशन करते हो उसके वाइब्रेशन बनते हैं. कोई भी उस स्थान पे आएगा उसे उस वाइब्रेशंस का अंतर फील होगा. हमें शायद खुद को फील नहीं होगा पर दूसरों को होगा. तो इसलिए प्रयोग के रूप से पहले पहले आप एक ही जगह करो. समझो आप सेंटर पे जाते हो तो वहां मेडिटेशन रूम है, वहां करो. घर पे भी आप एक ऐसा स्थान बनाओ जहां आप रोज एक ही जगह मेडिटेशन करेंगे. उसमें है अर्ली मॉर्निंग, मतलब टाइमिंग बताएंगे आगे. पर एक बार बैठ के ऐसा, उसके भी रूल्स होते हैं. आइदर आप फ्लोर पे मैट डाल के उस मैट पे बैठो, या तो आप कुर्सी पर बैठो या सोफा पर बैठो, कंफर्टेबल काउच पे बैठो. जितना हो सके बेड पे नहीं बैठना. हाँ, रात को सोते समय जब लेटे लेटे करते वो अलग बात है, वैसे बेड यूज नहीं करना. उसमें तो है ही ना वाइब्रेशन स्लीप के, तो कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसीलिए कोई भी ऐसा स्थान जहां पर आप आराम से बैठ सको. हाँ, आप बीमार हो, आपको रेस्ट की जरूरत है तो भले लेट के करो. फिर है जो आपका पोस्चर है ना, थोड़ा सीधा रखना. अगर ऐसे इंडिपेंडेंटली आप सीधा नहीं बैठ सकते तो भले आप सपोर्ट लीजिए, लेकिन सीधा क्यों? अपना स्पाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने उसको सीधा नहीं रखा तो आगे चल के उसकी शेप क्या हो जाएगी, और फिर बहुत पेन शुरू हो जाएगा. ऐसे ही ये जो सारे साइटिका के नर्व्स है, ये सब, इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. और फेस जो है ना, ऐसा कि ऐसा कंटिन्यूस ना रहे, क्योंकि यहां भी पेन शुरू हो जाएगा. इट शुड बी जस्ट स्ट्रेट. और फिर आंखें इस राजयोग के अभ्यास में बंद नहीं करने की जरूरत है. फिर भी अगर आपको लगता है थोड़ी देर तो बंद करूं तो भले करो, लेकिन इसका अभ्यास लगभग आंख खोल के ही किया जाता है. लेकिन वो त्रातक में जो करते हैं वैसा नहीं, एकदम ऐसे नहीं, नेचुरल. ब्लिंक भी कर सकती है आंखें, नेचुरल रहे. लेकिन उसको यहां वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो सामने फोकस के लिए आप कोई भी एक पॉइंट पर अपनी आंखों को स्थिर कर सकते हैं ताकि आंखें नेचुरली स्थिर हो जाए. अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छी करेंगे ना, रूम में कोई आएगा जाएगा, गाड़ी का हॉर्न बजेगा, कुछ भी होगा, आपको बाद में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को फोकस करने की प्रैक्टिस कर चुके हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रिलैक्स मूड में बैठे. बहुत स्ट्रेस आया है, बड़ा प्रॉब्लम आया है, प्लीज उस समय मेडिटेशन में ना बैठे, वो कुछ हेल्प नहीं करता है. उससे अच्छा एक वॉक करके आओ, स्नान कर लो ठंडे पानी से, फिर बैठो, फिर आपको सहज लगेगा. कहीं कहते हैं बेंजी अगर मुझे वो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है तो मैं उसके पहले करूं. नहीं, करना अच्छा है, लेकिन बिगिनिंग में उस समय करेंगे तो मीटिंग की बातों सिवाय कुछ याद नहीं आएगा, क्या फायदा होगा. तो पहले आप एकदम रिलैक्स स्टेट में जब होते हैं उस समय स्टार्ट करें, नॉट व्हेन द इवेंट इज ऑलरेडी देयर, नॉट एट दैट टाइम. तो तभी आदत पड़ेगी, फिर इवेंट के टाइम भी आप कर सकेंगे. कोई रिजिडिटी नहीं है पोस्चर में. आपको लगता है कि मैं अब पैर थक गया है, सुन हो गया है, तो धीरे से अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, धीरे से, जिसे बाजू वाले को भी पता ना चले कि आपने अपने पोस्चर को बदल दिया है, लेकिन कर सकते हैं, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस अपने बॉडी को दो कि मेडिटेशन के टाइम वो थोड़ा आपको कोऑपरेट करे, थोड़ा स्थिर रहे। इसीलिए पहले एक घंटा नहीं करो, बॉडी तो बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा एक घंटा। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, तो बॉडी को भी तो प्रैक्टिस देनी पड़ेगी ना कि भाई तू भी जस्ट बी देयर, डोंट कनेक्ट विथ मी लाइक हाउ यू कनेक्ट द होल डे, जस्ट बी देयर। आप बॉडी को बोल रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, जो हठ योग में तो घंटों क्या महीनों क्या सालों तक ऐसे रहते हैं, कहते हैं वो कीड़े का सारा ये हो जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। बट वी आर नॉट डूइंग दैट वे, अवर मेन फोकस इज कि मन बुद्धि को पावर मिले और हम अपने नेगेटिव एलिमेंट्स को खुद बदल सके। टाइमिंग्स, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, दैट इज बिटवीन 2 and 5, सुबह 2 बजे से 5 बजे तक। फिर है 6:30 से 8 बजे तक भी। फिर शाम को नुमा शाम या डस्क टाइम कहते हैं, 5:30 से 7:30 तक, मतलब नॉट 2 आवर्स, एनी टाइम इन बिटवीन दिस एंड 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, विच इज एन एक्टिविटी जिसमें आप परमात्मा को सारा रिपोर्टिंग करते हो सारे दिन का, जैसे आप अपने बॉस को करते हो ऐसे उनको करना है। और फिर आप एक प्यार से कोई भी रिलेशन के आधार से एक लेटर लिख सकते हो बाबा को कि आई एम राइटिंग टू यू एज माई फ्रेंड टूडे, आई एम राइटिंग टू यू एज माई कंपेनियन टूडे, ऐसे करके एक लेटर लिखना है एंड विथ वेरी ब्यूटिफुल थॉट्स इन द लेटर, नॉट ऑफ कंप्लेन, नॉट ऑफ सिचुएशंस, पर बहुत प्यार से, सचमुच जैसे एक लव लेटर होता है, ऐसे आप एक बहुत प्यार भरा लेटर लिखेंगे बाबा को एवरी नाइट एंड देन आप सो जाएंगे। अब हम आते हैं बैठ कर क्या करना है। तो पहले आपको 3 अपनी कॉन्शियसनेस को समझना होगा। 3 कॉन्शियसनेस हमारी, 3 स्थितियां हैं, स्वरूप है जिनको हमें समझना होगा। पहला स्वरूप है मैं आत्मा, 2 आंखों के पीछे, ब्रेन के जस्ट आगे। ब्रेन का शेप ऐसा होता है, आत्मा यहां पर होती है और वो 2 आंखों के पीछे के डायरेक्शन में है। एक सेकंड देख लीजिए अपने आप में, आंखों के पीछे और ब्रेन की जो वहां स्पेस है वहां पर मैं आत्मा एक ऊर्जा के रूप में, एक सितारे के रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में विराजमान हूं, बैठी हूं। हो गया, ऑडियो विजुअल प्रैक्टिस कर ली, किया ना अभी सबने, ऑडियो भी किया मना सुना भी और देखा भी खुद, बस केवल इतना, क्योंकि प्रयोग किए बिना आपको कभी एक्सपीरियंस आ ही नहीं सकता। आपने कुछ पढ़ा और आपको एक्सपीरियंस आ गया है, कभी हुआ है क्या? जब तक आप खुद नहीं करेंगे वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ऑडियो विजुअल की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस तब आता है जब उस सत्य होता है। इफ इट इज रियली द इटर्नल ट्रूथ, इट विल कम टू यू एज एन एक्सपीरियंस। तो आप खुद साइंटिस्ट बन अपने प्रयोग करें और अपने अनुभूतियां निकालें। तो सबसे पहले मैं आत्मा कहां बैठी हूं? इस शरीर में। और मैं कहां हूं? दुनिया में, पृथ्वी पर, धरती पर। तो नीचे जो पूरा यूनिवर्स का जो पिक्चर दिखाया गया है जिसमें अपनी पृथ्वी भी है, तो इस कॉन्शियसनेस में हम यहां पर है, याद रहेगा। मैं आत्मा अपने शरीर में, पृथ्वी पर, माना इस पृथ्वी के वातावरण में मैं आत्मा अपने शरीर में हूं। दिस इज कॉल्ड फिजिकल कॉन्शियसनेस, शारीरिक अवस्था या स्वरूप आत्मा का। ये हो गया एक। हम तो आत्मा भी नहीं समझते थे ना, तो बॉडी समझ के हमने इतना समय बिता दिया। अब जो थोड़ा सा समय बाकी है उसमें मैं आत्मा इस शरीर में हूं, अब इसका प्रैक्टिस करना है। हूं मैं पृथ्वी पर ही, ये पहला कॉन्शियसनेस। दूसरा कॉन्शियसनेस, दूसरी जो हमारा स्वरूप है वो है, कई लोग मशीन से नहीं ऑरा देखते हैं बाहर का, ऐसे ही हमारे खुद के विचार, खुद के कर्मों से इस बॉडी के अंदर एक ऑरा से एक शरीर बनता है, और वो शरीर इसी हाइट वेट हर प्रकार से वो ही नजर आता है, लेकिन केवल उसमें लाइट है और कुछ नहीं है। प्रकाश की काया बोलते हैं, हम सब में है। कई लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म काया, और हर एक में है। ऐसा नहीं कोई तपस्वी है, कोई बहुत सालों से किया हुआ है, उसी के पास है, नहीं। क्योंकि हम सब सोचते हैं, सब कर्म करते हैं, इसीलिए हम सब के पास क्या है, सूक्ष्म काया। और अभी वो सूक्ष्म काया कैसी है, पूरी ऐसे ब्रिलियंट नहीं है, वो बहुत थोड़ा शेड्स वाली है। एक छोटा सा झूठ भी बोला होगा ना, उसके इंप्रेशन भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेड वाली बॉडी है वो अभी। लेकिन जब वो एब्सोल्यूट ब्रिलियंस वाली होती है ना, उसको क्या कहते हैं, एंजल, फरिश्ता। तो हम सबके अंदर वो फैसिलिटी है कि हम अपने एंजेलिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, और राजयोग मेडिटेशन में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने अभी प्रैक्टिस किया, मैं आत्मा किधर हूं, शरीर में दो आंखों के पीछे, शरीर में देखा सारे ऑर्गन्स है, कितनी हड्डियां, कितने मसल, सब पता है शरीर का। अब हम अपने थॉट को स्विच करते हैं कि मैं आत्मा अभी लाइट के बॉडी में हूं, अगेन ऑडियो विजुअल टेक्निक, मैं आत्मा अपने लाइट के बॉडी में हूं, इसको मैंने खुद बनाया है। पर राजयोग मेडिटेशन में हमें उसे एंजल के रूप में ही देखना है, बस ये कंडीशन है। वो ग्रे, वो ब्लैक, वो अलग रंग नहीं देखने हैं, मुझ में वो एंजल स्वरूप ही है, समझ रहे हैं ना। और उसके लिए आपको एक और मेडिटेशन रूम में जाना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, इस धरती पर रह के नहीं कर सकते, वो आएगा ही नहीं अनुभूति में। उसकी अनुभूति करनी है तो आपको मन बुद्धि से पृथ्वी के वातावरण से परे, सूरज चांद सितारे सारे ग्रहों से भी परे, स्पेस से भी परे, जहां पर आपको व्हाइट जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वो ऐसा होता है जैसे हजारों चंद्रमा की लाइट हो, ऐसी अनुभूति है उस स्थान पर। क्योंकि हमारी संस्था में कई ध्यान में जाने वाली बहनें हैं, जो मेडिटेशन से एक अलग क्रिया है, पर वो ध्यान में जाने वाली बहनें अपनी कॉन्शियसनेस को ये सूक्ष्म वतन तक या सूक्ष्म लोक तक ले जाती है। उसका भी कोई कारण होता है, हम सब ऐसे ध्यान में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मेडिटेशन द्वारा भी ये ऑडियो विजुअल टेक्निक से हम अपने को इस धरती के वातावरण से परे उस सूक्ष्म लोक के वातावरण में ले जाएं। मन कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। कल आपको शिवानी बहन कहां लेके गए थे, बिगिनिंग में अपने अपने घर गए थे ना एक सेकंड में। तो मन में तो ये है एबिलिटी, हमें खाली यूज करनी है अभी। तो मन बुद्धि द्वारा कहां जाएंगे, पृथ्वी के वातावरण के पार, जहां पर आध्यात्मिक क्षेत्र आरंभ होता है, और वो स्थान है जहां हम अपने एंजेलिक बॉडी सूक्ष्म काया में अपने उस मेडिटेशन रूम में बैठेंगे। और आप जितना समय वहां है, अब आपका कनेक्शन पृथ्वी के साथ नहीं है। कैसे नहीं है? मन बुद्धि द्वारा ही नहीं है। अब आपका फोकस टोटली सूक्ष्म लोक में है। अब उधर बैठ के क्या करेंगे आप? उधर कैसे होंगे? आत्मा अपनी सूक्ष्म काया में। समझ रहे हैं ना? जो लिख सकते हैं वो लिख भी ले, क्योंकि उसके बगैर फिर प्रैक्टिस नहीं होगा। वो सेकंड स्टेज है। और जब आप उधर है तो आपको क्या करना है? एंजल बन के। एंजल क्या करती है? एंजल क्या करती है जी? एंजल मदद करती है। उसका काम ही है प्योरली मदद करना। तो जैसे बताया गया आपको आगे कि हमें देना है, हमें लेना नहीं है, तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? तो वहां सूक्ष्म वतन में आप कहेंगे, आज मैं ना प्रेम की एंजल हूं। मैंने जो सात गुण नहीं आत्मा के, उसके कोई भी एक गुण को ले लो और अपने को उसे भरपूर करो कि आज ना मैं बस स्नेह की एंजल, प्रेम की एंजल हूं। मेरे में प्रेम कूट कूट के भरा है। मेरा पूरी सूक्ष्म काया जो है प्रेम के वाइब्रेशन से भरी हुई है। मुझे अपने को भी, अपने लिए भी इतना ही प्यार आ रहा है। और अब ये वाइब्रेशन इस सूक्ष्म लोक में फैलते हुए पृथ्वी तक जा रहे हैं और पूरे पृथ्वी को, हर एक आत्मा को, हर एक योनि को, सब तत्वों को ये प्रेम के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। बस आप साक्षी होकर देखते जाओ कि ये प्रेम का वाइब्रेशन हर एक को पहुंच रहा है। बिना पैसे आप दे सकते हो? पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा ना? दे सकते हो। और आपका खुद का एंजल रूप है, आपको क्या रोकेगा? कौन रोकेगा? और आप उनको भी दे रहे हो जिनके साथ आपका कोई प्रेम का कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उन तक भी पहुंच रहा है। तो ये प्रैक्टिस राजयोग में सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब थर्ड, उससे भी परे, जब सूक्ष्म लोक खत्म होता है तो आपकी जो सूक्ष्म काया है वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती है। इसीलिए उससे परे आप कौन हो? केवल ओनली आत्मा। ये आपका थर्ड कॉन्शियसनेस, हमारा खुद का है, किसी और का नहीं है। कोई बुक में लिखी हुई बात नहीं है, हम खुद है। एक में आत्मा इस शरीर में, एक में आत्मा अपने सूक्ष्म काया में, और एक में आत्मा कंप्लीटली एज आई एम। और वो जो वातावरण है वो बिल्कुल आत्मा के साथ सेम फ्रीक्वेंसी का है। इसे नेचुरली वहां आत्मा फुल फ्रीडम का अनुभव करती है। और जैसे वो वातावरण साइलेंट है, ऐसे आत्मा बिल्कुल साइलेंस का अनुभव करती है। वो आत्मा बिल्कुल, सॉरी, वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए आत्मा भी एकदम शुद्धता का अनुभव करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि वो जो धाम है वो अपना घर है आत्मा का। वेयर द सोल कैन बी एज इट इज विदाउट एनी कवर्स। ये है रियल मेडिटेशन का स्थान। ये सारे मेडिटेशन के स्थान है। आप समझो, नेचुरली हम लोग योगी है। हम पृथ्वी पे भी कहां जाते हैं तो भी मेडिटेशन का स्थान है, सूक्ष्म लोक भी मेडिटेशन का स्थान है, परम धाम भी मेडिटेशन का स्थान है। अब बताओ कौन सी चीज हमारे से बहुत स्ट्रेंज होगी? कोई भी नहीं। तो अब हम अपने घर आत्मा के निज धाम में, परम धाम में पहुंच जाते हैं। और वहां हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? अपने को आत्मा रूप से देखने का, अपनी ओरिजिनलिटी को महसूस करने का, जिसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सब मर्ज हो जाता है। और क्या इमर्ज रहता है? आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, मोस्ट पावरफुल फॉर्म. तो आप अपना वो अनुभव करें प्रैक्टिस से कि नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं ओरिजिनली क्या था, कैसे भूल सकता हूं. भले ना मेरे अंदर कितने भी चेंजेस आज की तारीख तक आए हो, मैं वो कैसे भूल सकता हूं मैं कैसा था ओरिजिनली, जहां से मैं आया था. तो वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन. और फिर वहां आप अनेक आत्माओं को भी देखो कि मेरी तरह अनेक आत्माएं भी प्रेजेंट है, और वो भी कैसी है, जैसे मैं हूं. ओरिजिनल स्वरूप हर एक का सेम है. सो वी आर ऑल ब्रदर सोल्स. ये जो भाई भाई की प्रैक्टिस जो है वो धरती पर हो ही नहीं सकती अनलेस वी प्रैक्टिस दिस कॉन्शियसनेस के आत्मा स्वरूप में हम सब. और ये प्रैक्टिस आपको मेडिटेशन में करनी होगी, खाली समझने से नहीं होगा. और उधर हमारा धर्म कौन सा है परमधाम में, वो भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्योरिटी और पीस, पवित्रता और शांति हमारा स्वधर्म है आत्मा का. गीता में कहा भगवान ने अर्जुन से, अपने स्वधर्म में टिक जाओ. वो कौन सा स्वधर्म था? पवित्रता और शांति. तभी आपका डिसीशन राइट आएगा एंड यू विल विन इन द सिचुएशन. कहने का भावार्थ उनका वही था. तो वो प्रैक्टिस हम कहां कर सकते हैं? परम धाम में, जहां कोई डिफरेंसेस ही नहीं है. सभी आत्माएं अपने उसी स्वधर्म में टिके हुए हैं. तो इस प्रकार से यहां पर आत्मा की भाषा क्या होगी? बिकॉज वी डोंट एक्चुअली लव साइलेंस. इट इज ओके समटाइम्स वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, हमें चुप रहना पसंद आता है. इट इज नॉट फॉर लॉन्ग. वी लव टॉकिंग, पर आत्मा का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? साइलेंस. वो प्रैक्टिस वहां होगी. ऐसे नहीं होगी आपको इधर भी बोले कि अभी चलो एक घंटा मौन रखो, नहीं रख पाएंगे. भोजन देख के तो बिल्कुल मौन नहीं रहता है, लेकिन वहां जाएंगे तो वहां प्रैक्टिस कर सकेंगे. योर ओरिजिनल लैंग्वेज इज साइलेंस. तब कहते हैं ना, साइलेंस इज गोल्ड. वर्ड्स आर सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल लैंग्वेज साइलेंस है. अब परम धाम में क्या होगा? मैं तो वहां सेट हो गई हूं, लेकिन मैं आई क्यों हूं? अपनी ओरिजिनलिटी को परम शक्ति, परम आत्मा जो सदा भरपूर है, एवर प्योर है, सर्वशक्तिवान है, जो सब आत्माओं के मालिक है, मैं उनके साथ कनेक्शन करने आई हूं, उनके साथ मीटिंग करने आई हूं. जब उनके साथ जुड़ जाऊंगी, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा, वो मुझे चार्ज करना शुरू कर देंगे. और अभी इस समय परमात्मा छुट्टी देते हैं कि भले परमधाम में डीप साइलेंस है, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि उनको समझना है ना हमको. और ही इज अ डीप पर्सनालिटी, तो समझने के लिए हमें बातचीत करनी होगी. तो उन्होंने परमिशन दिए, भले परमधाम में नो टॉक है, लेकिन आप करो, मेरे से बात करो. ऐसा फील करो कि मैं शिव बाबा से बात कर रही हूं, मैं अपने मां बाप से, अपने सदगुरु, अपने शिक्षक, अपने फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ब्रदर, सिस्टर, सब रिलेशन से मेरा जो है सर्व संबंधी, मैं उनसे बात करने आई हूं. व्हेन यू आर एट दैट पॉइंट, यू आर अ राजयोगी. ओनली एट दैट पॉइंट. याद रहेगा, जब आप उधर हो और उनके सन्मुख हो, दैट कनेक्शन, कम्युनिकेशन, रिलेशन, दैट इज राजयोग. भले उसको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगे, नो प्रॉब्लम, पर स्टेजेस होती है ना प्रैक्टिस की. आपको पहले तो शरीर और आत्मा का ही कनेक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जब तक वो किया ही नहीं, आप परमधाम जा ही नहीं सकते. तो आपको मैंने स्टेप्स बता दिए क्या क्या प्रैक्टिस करना है परमधाम जाने तक. तो उसके लिए टाइम निकालो पहले और वही मेडिटेशन करो। ऐसे नहीं सोचो कि अरे मैं कब पहुंचूंगा शिव बाबा के पास, ऐसे नहीं सोचो, मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है उसके लिए वो सोचो। हाँ, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियस। तो यहां स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप, जब आप बैठेंगे, सबसे पहला स्टेप है दुनिया के पूरे वातावरण, कारोबार, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पास्ट, फ्यूचर, चिंताएं, सबसे अपने आप को विड्रॉ करना है कछुए की तरह। कछुआ जब अपना काम पूरा करता है कैसे अपने सारे अंग को अपने अंदर डाल देता है, ऐसे हमें अपने मन बुद्धि से सब जगह से अपने को विड्रॉ करना है थोड़े टाइम के लिए। ओनली अपॉइंटमेंट विथ माई सेल्फ और कोई भी नहीं। डिफिकल्ट लगेगा बिगिनिंग में, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से मन बुद्धि धीरे धीरे आपकी बात को समझने लगेंगे। कोई चीज परमानेंट स्टैंप वाली नहीं होती है यहां धरती पर, आप उसको बदल सकते हैं। तो इसलिए विड्रॉवल माना संकीर्ण करना, दुनिया के पूरे वातावरण से, आउटसाइड वातावरण से अपने को संकीर्ण करना, ये सबसे पहला स्टेप है। माना अपने आप को बोलो अब थोड़े टाइम के लिए दुनिया का जितना भी मेरा कारोबार है, जितने लोगों से मेरा कनेक्शन है, या जो भी जगह है, जो भी स्थल है, या जो भी बातचीत है, जो भी मेरी भूतकाल में या भविष्य की चिंताएं हैं, इन सब से मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले रहा हूं, स्वीकृति ले रहा हूं। फिर लास्ट में आप अपने बॉडी के पास आएंगे, बॉडी से भी आप बात करेंगे कि मैं तुमसे भी थोड़ी देर के लिए स्वीकृति लेता हूं, आप मुझे सहयोग देना। आप बस ऐसे साइलेंट स्थिर रख के बैठना, मैं आपके पास आऊंगी थोड़े समय के बाद। ऐसे बहुत प्यार से कम्युनिकेशन शुरू करना है अपने से। और फिर विड्रॉ करके सेकंड स्टेप होगा टू गेट पोजिशन्ड। जैसे फ्लाइट में पायलट कैसे अपनी जगह पर पोजीशन हो जाता है, तभी हमको मालूम पड़ता है अभी फ्लाइट उड़ेगी, चालू होगी। ऐसे ही जब तक आत्मा यहां नहीं बैठ जाती है तब तक पोजिशनिंग हुआ ही नहीं। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस पूरा यहां आ जाते, दैट मीन्स आई एम रेडी फॉर मेडिटेशन नाउ। थर्ड, फिर आपको इनिशिएशन शुरू करना है। फिर वो पॉइंट आप आ गए, आई एम अ सोल। फिर आपको सोल के संबंधित विचारों को फिर से रिवाइज करना है कि मैं वास्तव में हूं कौन। ये सोल माना क्या, मैं कौन हूं, मैं किस चीज से बनी हूं, मेरे अंदर क्या क्या है, मैं कैसे पृथ्वी पर अपना कार्य करती हूं, लेकिन वास्तव में मैं पृथ्वी पर आई क्यों हूं, क्या मेरा कोई विशेष पार्ट है, मेरी कोई विशेषता है जिसके कारण मैं यहां हूं, मेरा कोई पर्पस है जिसके कारण मैं यहां हूं, मुझे अपनी गहराई में जरूर जाना है। और फिर जो कोर्स कराया है आत्मा के ऊपर, धीरे धीरे उस तक पहुंचने की कोशिश करें। ये आपकी खुद की बातचीत है, इसलिए कोई लिखित फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आपको खुद ही इनिशिएशन अपने अंदर करना है, जो मैंने आज तक नहीं सोचा, हु एम आई, मैं कौन हूं। वहां से वो मेडिटेशन का अभ्यास शुरू होता है और धीरे धीरे आप उन विचारों की गहराई में आते हो। स्टार्ट फीलिंग, फीलिंग, थिंकिंग के बाद कौन सी चीज चलती है अपने मन में, फीलिंग। फील करते जाओ, फील करते जाओ, हां मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा मन क्या करता है, मेरी बुद्धि क्या करती है, मैं कौन से संस्कार से काम करता हूं, मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से। धीरे 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 एक सी विचारों, जब तक आपको प्रोग्रेस नहीं फील होता है आपको वो प्रैक्टिस करनी जरूर है। और फिर जो है इसी कॉन्टेम्पलेशन में आपका मन ये क्वेश्चन करेगा कि मैं ओरिजिनली कहां से आया हूं, और वो संकल्प आपको उड़ने में मदद करेगा। और फिर आप उस थॉट पे आएंगे कि मैं आत्मा कहां बैठी हूं, अपनी सूक्ष्म काया में, Which is my vehicle? मेरी वो वाहन कौन सा होगा जिससे मैं जाऊंगी? मेरी सूक्ष्मकाया. तो फिर उसमें स्थित हो जाए. और वो सूक्ष्मकाया इतनी लाइट होती है कि आप संकल्प करते ही वो यहां से ट्रैवल करना शुरू कर देती है. पहले टेरेस के ऊपर जाओ, फिर टेरेस से आकाश की तरफ जाओ, फिर आकाश में बादलों के इस बादलों को देखते हुए बादलों से पार जाओ, फिर स्पेस में जाओ, स्पेस में ग्रहों स्टार सबको पार करते हुए आप सूक्ष्म वतन तक पहुंचो. सूक्ष्म वतन में वो एंजल की प्रैक्टिस करो, देने की प्रैक्टिस करो सारे वर्ल्ड को, और फिर वापस संकल्प करो अब मुझे अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाना है. तो ये रहा सूक्ष्म वतन का प्रैक्टिस जो पिक्चर में दिखाया है. आप ऐसे होंगे सूक्ष्म वतन में, दिख रहा है? दिस इज हाउ यू विल बी इन द सटल वर्ल्ड. आपकी सूक्ष्म काया से सी यू मेडिटेटिंग, बट एज एन एंजल आप खाली सबके साथ शेयर कर रहे हो और आप दे रहे हो दुनिया को. देखा आपके एंजेलिक फॉर्म से आप क्या कर रहे हो. देखो शिव बाबा तो अपना काम कर ही रहा है, वो तो अपना काम कर ही रहा है. अभी आपको फोकस करना है कि मैं कैसी हूं, मैं क्या कर रही हूं. तो सबसे पहली चीज एज एन एंजल आप मदद कर रहे हैं पूरी दुनिया को. एक बार ये देना सीख गए ना, फिर आप देखना दुनिया ही आपकी यहां भी लाइफ पैटर्न पूरी बदल जाएगी. एक्सपेक्टेशन कम होते जाएंगे, गिविंग ज्यादा होती जाएगी. पर इसके करने से आपको कम एफर्ट लगती है, लेबर कम लगता है. और अब कहां पहुंच गए हम? सूक्ष्म वतन से परम धाम. देखो देखो ध्यान से देखना, जब देखेंगे ये ना तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी इजी हो जाएगी. ये हो गए आप परम धाम में आ गए. परम धाम में आप एग्जैक्टली कहां आए? आप आए जहां सब आत्माएं बैठी है. यू आर नॉट अलोन, इट इज द होम फॉर ऑल सोल्स. तो सब आत्माएं बैठी है, माना मेरा हस्बैंड भी इधर है, मेरी बहन भी इधर है, मेरे मम्मी भी इधर है, मेरे फादर भी, मेरे ग्रैंडफादर सब इधर ही है इन फॉर्म ऑफ सोल्स. मैं अकेली नहीं हूं, आई शुड नॉट फील स्ट्रेंज. सब इधर है, ठीक है? अगेन बिकम कंफर्टेबल कि मैं सबके साथ ही हूं. पर किस फॉर्म में? सोल, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, सीड कॉन्शियसनेस, अपने बीज रूप में, नो कवर्स. और फिर वहां मैं किस कंपनी में आई हूं? द ग्रेटेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द प्योरेस्ट कंपनी आई कैन एवर हैव, और जो मेरा अपना है सदा के लिए. अपना है मेरा वही है परमानेंट लेवल पर, इनके सिवाय मेरा कोई नहीं है. द डियरेस्ट, द मोस्ट बिलवड, द मोस्ट लवलीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, मेरे बाबा, जिसका कोई दैहिक स्वरूप नहीं है. अभी तक हमने क्या किया? आपको जिस दैहिक स्वरूप से आपको अनुभूति चाहिए थी शिव बाबा आपको देता गया. पर एक टाइम तो आएगा ना जब वो कहेगा अभी मुझे तो देखो, मुझे याद करो. तो आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा. एक स्टेज आती है. अभी भी अगर आपकी वो स्टेज रेडी नहीं है ना तो ये कुछ बुद्धि में नहीं जाएगा. Yet you will continue with what you were doing earlier because अभी तक आप उस स्टेज पे आए नहीं. पर आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना कभी तो आएंगे, आज नहीं तो कल. आपको अपने कॉन्शियसनेस में ऊपर उठना ही है, कुछ हो ही नहीं सकता उसके बिना. There is no other way. You have to uplift your consciousness. खाली अच्छे काम कर लिए, दो चार डोनेशन दे दिया, गरीबों को हेल्प कर दिया, that is not enough. वो तो खाली बाहर की एक्टिविटी है. टेम्पररी थोड़े सेकेंड्स के लिए हैप्पीनेस मिल गई, संतुष्टता मिल गई, यू कैन कंटिन्यू विद दैट एक्टिविटी, नो प्रॉब्लम. पर ये जो हाईएस्ट है वहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा. और सारे धर्म कहते हैं, ऐसा नहीं ब्रह्मा कुमारीज कह रही है, सारे धर्म कहते हैं खाली धार्मिक प्रवृत्तियों से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, बस इतना ही फर्क है। तो हमें परमात्मा शिव बाबा के एकदम सन्मुख, अब स्टेप्स क्या है, फ्यू मिनट्स ना बस सब कुछ छोड़ दो, बस उनके सामने, जैसे न्यू बॉर्न बेबी को पकड़ा आपने, डू यू नो व्हाट टू टॉक टू हिम, तो आप क्या करते हो, जस्ट स्टेयरिंग एट दैट बेबी फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड यू आर फुल ऑफ इमोशंस, ऐसा नहीं आप ब्लैंक हो, ऐसे ये फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंस विद फुल इमोशंस, आप परमात्मा की नजर में हो एकदम सामने, बिलीव इट, कैसे आप बोलोगे, जैसे कोई एकदम एस्टाउंडेड हो जाता है, एकदम वो शॉक्ड हो जाता है, क्या वो बोल पाता है, ऐसी अवस्था आत्मा की होती है परम धाम में परमात्मा के सामने। सेकंड है, देन आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट अ स्वीट कॉन्वर्सेशन, मे बी यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू वुड लाइक टू, मैंने आपको ऐसे लगेगा कि मैं बाबा से क्या बात करूं, बाबा मुझे अपने आप को भी जानना है, आपको भी जानना है, मैं इसलिए आई हूं, कहते आप है ना सब सुख देते हो और दुख मिटा देते हो, मुझे आपकी ये कमाल भी देखनी है, आई रियली वॉन्ट टू सी ऑल द ब्यूटी ऑफ लाइफ थ्रू यू, कहते ना कोई नहीं देख पाता है तो कहता है अपने पार्टनर को कहेगा मैं तुम्हारी आंखों से सारी दुनिया देखना चाहता हूं, तो हम बाबा को कह सकते बाबा मैं आपके द्वारा पूरी दुनिया को देखना चाहता हूं, सो यू कैन हैव वेरी स्वीट वेरी लविंग कॉन्वर्सेशंस विद बाबा, और वो सब सुनता है, सब सुनता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमारा नहीं सुनता, बट वी नीड टू बी गुड लिसनर्स, वी नीड टू बी, हमें बहुत अच्छे लिसनर्स बनना जरूरी है। फिर आप क्या करेंगे, बातचीत करके आप कोई भी एक थॉट पे आ जाओ, धीरे धीरे संकल्प कम करके केवल एक थॉट पे आ जाओ, कोई भी एक थॉट जो आपको बाबा से अनुभव करना है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बातचीत करने में भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, यू हैव टू कम टू अ वन पॉइंट ऑफ फोकस, फिर आप छोड़ दो, बाबा को आपके ऊपर कार्य करने दो, ही विल डू हिज वर्क, आप उधर थोड़ी देर समय बैठो, फिर आपको ऑटोमेटिकली लगेगा अभी बाबा कह रहे हैं बच्चे वापस जाओ, और फिर आप वापस अपनी धरा पर कर्म क्षेत्र पर फिर से आप अपनी वो बॉडी लेके, वहां लेना पड़ेगा ना सूक्ष्म लोक से, अपनी बॉडी से ट्रेवल करके फिर से अपने इस बॉडी में आकर बैठ जाएंगे। गेट रेडी फॉर योर एक्टिविटी नाउ आफ्टर मेडिटेशन। तो ये जर्नी है राजयोग की, इज इट ओके या कोई प्रश्न है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टाइम, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, इज इट क्लियर स्टेप बाय स्टेप कैसे मेडिटेट करना है, है ना, और जरा भी स्ट्रेंज नहीं समझना, ये सब हमारे मेमोरी में है, सब है, करेंगे ना वो बाहर आएगा, वॉल्केनो में कैसे होता है सब, कैसे बाहर आता है, ऐसे हमारे अंदर है, पूरा वॉल्केनो है अंदर, मेडिटेशन क्या करता है वो वॉल्केनो के एकदम अंदर ले जाता, अंदर ले जाता, अंदर ले जाता, फिर जो बाहर आता है दैट समथिंग फर्टिलाइजेज एवरीथिंग, एकदम नया, पूरी धरनी को नया बना देता है, ऐसे हमारे साथ होता है, कभी कभी गुस्सा भी बाहर आता है, कभी कभी रोना आता है व्यक्ति को, पर जो हमारे अंदर है वो सब बाहर तो आएगा ना, तो प्लीज माइंड नहीं करना, फिर बताना अपने आप को अरे आया तो है लेकिन अब मुझे इसको यूज थोड़ी करना है, चलो आ तो गया बाहर लेकिन मुझे उसको यूज नहीं करना, किसी के प्रति जेलसी उत्पन्न हो जाएगी अचानक, तो बोले अच्छा आ तो गया लेकिन आई डोंट हैव टू यूज दिस राइट, इट हैज कम टू गो, ठीक है, आई कांट गिव एनीथिंग मोर देन दिस, टाइम अप हो गया है, कमेंट्रीज मिलेगी, ऐसी वाली कमेंट्रीज मिलेगी, लेकिन आप खुद करेंगे ना इतना ब्यूटिफुल कभी नहीं होगा जो आप खुद करेंगे, कितनी भी मदद ले लो You will not own it. You will own only when you will yourself do it. हम सब कौन है? हम सब है राजयोगीज. Originally, कोई बना नहीं रहा हमको. हम originally ही राजयोगी है. फिर बने कर्मयोगी, फिर गए भक्ति में, भक्ति भक्त योगी बने. सब अलग अलग हमने करते गए, लेकिन ओरिजिनली हम कौन है? राजयोगी, जिसमें आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन हमारा इटर्नल है. बस इतना याद रखेंगे तो धीरे धीरे आप उसमें प्रोग्रेस जरूर करेंगे. ओम शांति. चलो करें, योग करें. टाइम नहीं तो एक गीत बजेगा, पर हम वो ही करेंगे जो हमने अभी